अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने किताब जिंदा रुद को सुनने के लिए टाइम निकाला। किताब जिंदा रुद ये इल्लामा इकबाल की मुकम्मल शान हयात है और इसको डॉक्टर मोहम्मद जवेद इकबाल ने लिखा है। जिंदा रुद बाब नंबर 1 सिलसिला अजदाद, बाब नंबर 2 ख़ानदान सियालकोट में, बाब नंबर 3 तारीख़ वलादत का मसला, बाप नंबर 4 बचपन और लड़कपन, बाप नंबर 5 गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, बाप नंबर 6 तदरीसों व तहकीक, बाप नंबर 7 यूरोप, बाप नंबर 8 फिक्रे माश, बाप नंबर 9 अजवाजी ज़िंदगी का बुरहान, बाप नंबर 10 ज़ेन इरतका, बाप नंबर 11 तख्लीकी करिश्मा, बाप नंबर 12 कलमी हंगामा, बाप नंबर 13 खाना नशीनी, बाब नंबर 14 हिंदू मुस्लिम तसादम का माहौल, बाब नंबर 15 अमली सियासत का खार राज, बाब नंबर 16 दौरा जनूबी हिंद, बाब नंबर 17 मुस्लिम रियासत का तसव्वुर, बाब नंबर 18 गोलमेज कॉन्फ्रेंस, बाब नंबर 19 अफगानिस्तान, बाब नंबर 20 माखज दिबाचा नक्श सानी। इल्लामा इकबाल की सवाने हयात जिंदा रुद को जो आलमगीर पज़ीराई मिली है, इसका नतीजा है कि ये किताब तबाह मुकर्रर के मरहलों से बार बार गुजर रही है। इसके तराजम दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में हो रहे हैं। फारसी में जवेदान इकबाल के नाम से तर्जमा कई बार शाया हुआ, अरबी में नहरुल खालद के नाम से तर्जमा हुआ है जो अशात के लिए तैयार है। इसी तरह बंगाली, अंग्रेज़ी और दुनिया की दूसरी ज़बानों में भी तर्जमे का काम की जारी है। जिंदा रुद की इकबाल की एक मुस्तनद सवाने हयात के तौर पर मकबूलियत मेरे लिए बायस मसरत है। मौजूदा एडिशन इकबाल अकादमी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के एक मरूफ अशाती अदारे संगे मील पब्लिकेशंस लाहौर के इश्तराक से शाया किया है। इस मौके पर मैंने इस पर दोबारा एक नज़र डाली है और इसके प्रूफ भी देखे हैं ताकि किताब हर हवाले से मुस्तनद हो सके। किताब को मैंने कहीं कहीं कलम भी लगाया है। किताब में शजरा मजीद तहकीक के साथ शामिल किया गया है। सबसे बढ़कर ये कि इसमें इल्लामा इकबाल की नायाब तस्वीर का इजाफा किया गया है जिससे इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार का मुताला करने में सहूलत होगी। असर हाजर एक तहजीबी बहरान में मुबतला है। अशोक की इस घड़ी में मुस्लिम दानश्वरी की कड़ी आजमाइश हो रही है। तहजीबों के तसादम की इस फ़ा में मगरबी तहजीब तमदन पर इकमाल की तनकीदी नज़र से हम इस्तफादा कर सकते हैं क्योंकि 20वीं सदी में इलामा से बढ़कर किसी ने इस तहजीबो सकाफत का गहरी नज़र से मुताला करके असासी नताज अखज नहीं किए जिनकी मदद से हम इस तहजीब का जायजा लेकर बुनियादी फैसले कर सकते हैं। जिंदा रुद का मुताला हमें सिर्फ इलामा की सवाने से ही आगाह नहीं करता, इकबाल की जद्दोजहद जहनी इर्तका तख्लीकी करिश्मे और कलमी हंगामों के तरीक से भी शानसनाई फ्राहम करता है। यूँ असर हाजिर में इकबाल मुसलमानों के लिए फिक्री रहनुमाई का एक सरचश्मा है जो अब भी ताज़ा कारी में मिसाल नहीं रखता। दुनिया भर में फिक्र इकबाल का मुताला एक ऐसी दानिश के तौर पर किया जा रहा है जिसने बरसगीर के मुसलमान को नजरियाती और सियासी कुव्वत फ्राहम की, जिस पर पाकिस्तान वर्ज़े वजूद में आया, जो मजहबी इतदाल पसंदी और इस्लाम में रोशन ख्याली का अस्तारा है, जो मगरब और मशरक में राबते और तल्लक की एहसास फ्राहम करता है। लिहाजा इकबाल का बतौर एक शख्सियत और मुफक्कर के मुताला इज बस ज़रूरी है। जिंदा रुद इसी मुताले में आपकी मदद करती है कि हम इकबाल की शख्सियत की तफहीम के जरिए इनकी फिक्र से रहनुमाई हासिल करें। मौजूदा एडिशन को नज़रसानी शुदा एडिशन भी कहा जा सकता है। इसे आला कागज़ और मेयारी तबात के साथ साथ एक यक जल्दी भी बना दिया गया है। कंपोजिंग भी नई की गई है जिससे इसका हजम कम हो गया है। उम्मीद है कायरीन ने किताब से बेहतर तौर पर इस्तेफादा कर सकेंगे। जवेद इकबाल 15 जनवरी 2004 सफ़ा नंबर 6 बाब 1 सिलसिला अजदाद। एक कलमी रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज़ में इकबाल अपनी कौमियत सपरो कश्मीरी पंडित तहरीर किया। इन्होंने अपने वालद से सुन रखा था कि इनका तल्लक कश्मीरी ब्राह्मणों के एक कदीम ख़ानदान से है। गोत इनकी सपरो है और इनके जद्दे आला जिन्होंने इस्लाम कबूल किया बाबा लोल हाज या लोली हाजी के लकब से पुकारे जाते थे। मोहम्मद दीन फौक के नाम इकबाल के खतूत से पता चलता है कि फौक इकबाल के हबाब में से थे और इनके वालद को भी जानते थे। ज़ाहिर है ये इतला इकबाल या इनके वालद ने फोक को दी होगी। चुनाचा फोक ने इसी इतला पर इंहसार करते हुए अपनी किताब मशाहीर कश्मीर जो 1930 में शाया हुई और फिर अपने मजमून बनवान डॉक्टर शेख सरमद इकबाल नरेंग ख्याल लाहौर 7 सितंबर अक्टूबर 1932 में तहरीर किया। शेख साहब का कश्मीरी पंडितों के एक कदीम खानदान से तल्लक है। शेख साहब के जद्दे आला तकरीबन 225 साल हुए मुसलमान हो गए थे। गोद इनकी सपरों थी। 2 साल बाद यानी 1934 में फोक ने तारीख अकवाम कश्मीर जिल्द अव्वल शाया की। इस किताब में वो तहरीर करते हैं कि लफ्ज सपरों पर मजीद तहकीक के लिए उन्होंने इकबाल से रजू किया। जवाब में इन्हें इकबाल का खत मुहर्रा 14-16 जनवरी 1934 वसूल हुआ। इकबाल ने इन्हें लिखा, कश्मीरी ब्राह्मणों की जो गोद सपरों है इसके मतलब के असल मैंने जो कुछ अपने वालद महरूम से सुना था अर्ज करता हूँ। जब मुसलमानों का कश्मीर में दौर दौरा हुआ तो ब्राह्मणा कश्मीर मुसलमानों के अलूम व जबान की तरफ कदामत परस्ती या किसी और रोजा के बाइस तवज्जो ना करते थे। इसलिए जिस ग्रोह ने सबसे पहले फारसी जुबान वगैरह की तरफ तवज्जो की और इसमें इम्तियाज हासिल करके हुकूमत इस्लामिया का इतमाद हासिल किया वो सपरों कहलाया। सीन तकदीम के लिए जुबान कई जुबानों में आता है और प्रो का रूट ही वही है जो हमारे मसदर पढ़ना का है। वालद महरूम कहते थे कि ये नाम कश्मीर के ब्राह्मणों ने अपने इन भाई बंदों को अजरा तरीज व ताकीद दिया था जिन्होंने कदीम रसूम व तसबात कौमी व मजहबी को छोड़कर सबसे पहले इस्लामी जुबान व अलूम को सीखना शुरू किया था जो रफ्ता रफ्ता एक मुस्तकिल गोद होकर मशहूर हो गया। इसी खत में इकबाल तहरीर करते हैं, दीवाने टेक चंद MA ने जो पंजाब में कमिश्नर थे और जिनको जुबानों की तहकीक का शौक था एक दफा अम्बाले में मुझसे कहा कि लफ्ज सपरों का तल्लक ईरान के कदीम बादशाह शाहपुर से है और सपरों हकीकत में ईरानी है जो इस्लाम से बहुत पहले ईरान को छोड़कर कश्मीर में आबाद हुए और अपनी जहानत व फतानत की वजह से ब्राह्मणों में दाखिल हो गए। फौक इकबाल के इस खत को नकल करने के बाद तहरीर करते हैं कि पंजाब में सपरों गोद के चंद हिंदू और मुस्लिम खानदान मशहूर हैं और मुसलमानों में इकबाल का खानदान जिनके जद्दे आला 225 साल हुए आलमगीर के ज़माने में मुसलमान हो गए थे बहुत मशहूर है। फिर तारीख अकवाम कश्मीर जिल्द 2 में इकबाल के इसी खत के हवाला से लिखते हैं कि पंजाब में कोई और घर मुसलमान सपरों का नहीं अलबत्ता हिंदू सपरों के चंद नाम इन्होंने किताब में दर्ज किए हैं। इकबाल को अपने वालद की रवायत की तस्दीक के लिए अपने अजदाद का सुराग लगाने में कितनी दिलचस्पी थी वो इनके मंदरजा ज़ैल खत से जाहिर है जो उन्होंने 15 अक्टूबर 1925 को अपने ब्रादर शेख अता मुहम्मद को लिखा। आपका कार्ड मिल गया जिससे बहुत इत्मीनान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आला जालिक जवेद इकबाल बिल्कुल तंदुरुस्त है। आज पूरे 1 साल का हो गया है। इसकी वालदा आज कुर्बानी देने में मसरूफ है। आप और वालदे मुकर्रम ये सुनकर खुश होंगे कि मुद्दत की जस्तजू के बाद आज अपने बुजुर्गों का सुराख मिल गया है। हजरत बाबा लोल हज कश्मीर के मशहूर मशायख में से थे। इनका जिक्र ख्वाजा आजम की तारीख कश्मीर में इतफाकन मिल गया। वालदे मुकर्रम ने जो कुछ अपने बुजुर्गों से सुना था वो बहसियत मजमू दुरुस्त है। इनका असल गाँव लोचर ना था बल्कि मोजा चक्कू परगना अदून था। 12 साल कश्मीर से बाहर रहे और मुख्तलिफ ममालक की सैर में मसरूफ रहे। बीवी के साथ इनके तल्लुकात अच्छे ना थे इस वास्ते तरक्के दुनिया करके कश्मीर से निकल गए। वापस आने पर इशारा गैबी पाकर हजरत बाबा नसरुद्दीन के मरीद हुए। बकाया उम्र उन्होंने बाबा नसरुद्दीन की सोबत में गुजारी और अपने मुर्शद के जवार में मदफून हैं। अब उम्मीद है कि मजीद हालात मालूम हो जाएंगे। ख्वाजा आजम का तज़किरा मुख्तसर है मगर ये मुख्तसर निशान गलबन मजीद इंकशाफात का बाइस होगा। इन हालात के मालूम होने का सबब भी अजीबोगरीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के लिए एक किताब कश्मीरी तहजीब व तमदन पर लिख रहे हैं। मैं इनके मुमतनहीन में से एक हूँ। बाकी 2 मुमतहन इंग्लिस्तान और आयरलैंड के प्रोफेसर हैं। इत्तेफाक से रजिस्ट्रार साहब कल आए हुए थे। इन्होंने अपने किसी दोस्त को हदायत की कि ख्वाजा आजम की तारीख कश्मीर का कलमी नुस्खा मेरे मकान पर पहुंचा दे। वो शख्स कलमी नुस्खा तज़कीर तारीख मजकूर का लाया। मैं इस वक्त फारग बैठा था, यही किताब देखना शुरू कर दी। दो चार वर्ष ही उल्टे थे कि बाबा साहब का तذکرہ मिल गया, जिससे मुझको बड़ी खुशी हुई। गलबन बाबा नसरुद्दीन की औलाद कश्मीर में होगी। इनसे मजीद हालात मालूम होने की तवक्को है, और क्या अजब कि इनके पास अपने मरीदों का सारा सिलसिला मौजूद हो। इकबाल ने ख्वाजा मोहम्मद आजम शाह दीदा मरी की तसनीफ कश्मीर, तारीख कश्मीर आजमी, वाकयात कश्मीर नोश्ता 1755 के सफा 73 पर रशियों के बाब में बाबा लूल हाज के मुतल्लिक ये अंदराज पाया होगा। इज सकनान मोजा चक्कू परगाना आदू बूद जनी ख्वास्ता बूद वक़्त सोबत नस खुश नकरा खलक बीमान आमद ऐन मानी मोजब बरदूद दलश अज दुनिया शुदा राह काबा गिरफ्त दो अजदा साल सियासत करदा बा कश्मीर आमदा बाशारत गैबी मुरीद हजरत बाबा नसरुद्दीन शदु बकाया उमर दर खिदमत व सोहबत और जईद वक़्त रहलत दर आस्ताना चरार दर जवार पीर बुजुर्गवार असूद। इकबाल के जद्दे आला बाबा लोल हाज या लोली हाजी के मतलब इस मासक का इलम फौक को भी था, और इसका जरिया गालबन इकबाल खुद थे। फौक अपनी तसनीफ तारीख अकवाम कश्मीर मतबूआ 1943, जो इकबाल की वफात के 5 साल बाद शाया हुई में तहरीर करते हैं। सुल्तान जैनुल आबिदीन बुडशाह के ज़माने तख्त नशीनी 824 वफात 874 में हजरत शेख उल आलम शेख नूरुद्दीन वली के इरादतमंदों में से हजरत बाबा नसरुद्दीन एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत शेख उल आलम ने अपने अशार कश्मीर में अपने इस नामवर खलीफा का बहुत कुछ जिक्र किया है। बाबा नसरुद्दीन के मरीदों में बाबा लोली हाजी एक बुजुर्ग थे, जिन्होंने कई हज किए और 12 साल तक कश्मीर से बाहर सैरो सियाहत में ही रहे। चुनाचा मुसन्नफ तारीख के कश्मीर आजमी सफा 72 पर लिखता है कि दो अज दा साल सियासत करदा बा आमद कश्मीर बशारात गैबी मुरीद हजरत बाबा नसरुद्दीन शुदू बकाया उमर दर खिदमत व सोबत अज गुजार दीन। इनका असल नाम मालूम ना हो सका। लोल हज या लोली हाजी के नाम से इन्होंने शोहरत पाई। इन्होंने कई हज बा प्यादा किए। लोल या लाला या लाल कश्मीर में प्यार या इज्जत का लफ्ज है, जिसे बड़े भाई को काक लाल कहते हैं। वतन इनका परगन्ना अदून के मोजा चक्कू में था। कबूले इस्लाम से कबल जात के ब्राह्मण थे, गोद सपरो थी। पेशा इनका ज़रातकारी और जमींदारी था, लेकिन जब फोकर अख्तियार किया तो सब बातों से किनारा कश हो गया। आपकी कब्र चरार शरीफ में हाता मज़ार शेख नूरुद्दीन वली के अंदर है, जहाँ इनके मुर्शद बाबा नसरुद्दीन भी मदफन हैं। चुनाचा साहब तारीख कश्मीर आजमी लिखते हैं कि वक़्त रहलत दर आस्ताना चरार दर जवार पीर बुजुर्गवार असूद। फौक ने बाबा लोल हज के मुतल्लक दीदा मरी की तहरीर देखने के बाद जो कुछ अपनी तरफ से लिखा है, मुमकिन है इनकी जाती तहकीक पर या इकबाल या इनके वालद की इतला पर मबनी हो। बहरहाल वो इस सिलसिला में कोई सनद पेश नहीं करते। बाबा लोल हाज का तذکرہ दीदा मरी से तकरीबन 150 साल बाद अबू मोहम्मद हाजी मुहियुद्दीन मस्कीन की तालीफ तहाइफ अल इबरार फिल औलिया अगयार तारीख कबीरे कश्मीर 1903 के रशियों के बाब में भी मदरजा ज़ैल अल्फाज में मिलता है। वलादत तश दर मोजा चक्कू हलबंद परगन्ना अदून बूद हर दो चशम व पेश कंज बूंद पस दीरा दाइया तजवरीज बाजहूर आमद बाजनी अकद निका बरबस्त चो मनकुआ अश सूरत वरीदा बदीद बजनत दिल बाबा अजदी नतनफर गर्दीद पस कमर हिम्मत बरबस्ता बरामद सफर रियाजत हरमीन शरीफीन नमूदो पश अज तशरीफ या बी जियारत मुबारक चो मराजत बजानम कश्मीर कर दा खिदमत बाबा नसरुद्दीन रूमी अरादत अवार गोई तजदीद व तफरीद रबूज चो रालत कर्द दर मकबरा मुर्शद असूद व बजी नुश्ता अंध के दर क्रिया जारल परगन्ना कमराज मदफून अस्त रोजगार फकीर, जिल्द दो में शेख इजाज अहमद बरादर जदा इकबाल के हवाले से ना सिर्फ इकबाल के खत मुहर्रा 15 अक्टूबर 1925 का जिक्र है, बल्कि शेख इजाज अहमद की संद पर यह भी लिखा है कि इकबाल के बुजुर्गों की एक वली आरफ से अकीदत इनके बुजुर्गों के इस्लाम लाने का सबब और जरिया बन गया। ये और अब से 250 साल पहले की बात है जब इकबाल के घराने में ईमान व इस्लाम की रोशनी नमूदार हुई। शेख इजाज अहमद बयान करते हैं कि इनके दादा ने अपने बुजुर्गों की जुबानी सुना था कि इनके आबा में एक बुजुर्ग ने इतनी मरतबा पा प्यादा हज किया कि इनका लकब ही लोल हज, हज का आशक पड़ गया। बाबा लोल हज के मुतल्लक मस्कीन का बयान दीदा मरी की तफसील से कदरे मुख्तलिफ है। बहरहाल हमें ये इतला इकबाल की तहरीर से मिली है कि इनके वालद ने अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि शेख बाबा लोल हज या लोली हाजी इनके जद्दे आला थे। गो ये पता नहीं चलता कि बाबा साहब से इकबाल का रिश्ता किस पुश्त पर जाकर मुंसलिक होता है। दीवान टेक चंद ने लफज सपरों की जो तुजिया इकबाल के हवाले से की थी, यानी सपरो दरअसल शाहपुर की औलाद या ईरानी नस्ल थे, इसके मुतलक तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं। अलबत्ता मस्कीन के एक इकतबास से ये सुराग मिलता है कि कश्मीर में एक आतश परस्त रहब शाहपुर नामी ने कई शहर में सैयद अली हमदानी से मरगूब होकर इस्लाम कबूल किया था। इसी तरह ख्वाजा हसन निजामी ने भी इकबाल पर अपने मजमून में यौम इकबाल के मौके पर दिल्ली में मुकीम मिस्री सफीर की तकरीर का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि कश्मीरी ब्राह्मणों का तल्लक मिस्र से है। इनकी तहकीक के मुताबिक मिस्र में सूरज के मंदिर के बड़े पुजारी मेहनत हरी हरी थे और मिस्री जुबान में सूरज को रा कहते हैं। कुरान शरीफ की सूरत यूसुफ भी अलफ लाम रा से शुरू होती है, यानी रा का लफ्ज़ कुरान में भी मौजूद है। इसी तरह हिंदू मत में भी राम की बड़ी अहमियत है। बकौल मिस्री सफीर महनत, हरी हर की शादी कब्ती फ़िरौन की लड़की से हुई और जब फ़िरौन लावल्द मर गया तो मेहनत हरी हर को फ़िरौन बना दिया गया और इसकी औलाद 400 बरस तक मिस्र में हुकूमत करती रही। बाद में नए इनकलाब के सबब नया ख़ानदान हाकम हो गया और हरी हर की औलाद मूसा अलैहिस्सलाम की यहूदी कौम के साथ मिस्र से निकल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन चलेगा, लेकिन हरी हर की औलाद अफगानिस्तान में आ गई, जहाँ इसने हरी नाम का एक शहर आबाद किया जिसको बाद में हरात कहने लगे। इसके बाद ये लोग कश्मीर में आए और कश्मीर से हिंदुस्तान में आए और गंगा के किनारे अपने मोरस के नाम पर हरी द्वार रीथर्थ बनाया। लिहाजा बरसगीर के कश्मीरी ब्राह्मण सब मिस्री नस्ल हैं और चूंकि इकबाल कश्मीरी ब्राह्मण थे इसलिए इकबाल भी मिस्री हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीरी ब्राह्मण होने के सबब मिस्री हैं। ऐसी तौजीहात पर तबसरा करना बेकार है। इंसान का जेहन अगर जरखेज हो तो शवाहिद की अदम मौजूदगी में भी किसी न किसी मुसहलत के तहत जो चाहे इख्तरा करके अतिया तहरीर में ला सकता है। अगर बाबा लोल हाज इकबाल के जद्दे आला थे तो जो मवाद हमारे सामने है इसकी रोशनी में कहा जा सकता है कि इनके बारे में दीदा मरी की तफसील मस्कीन की तफसील से ज़्यादा सही मालूम होती है। मस्कीन के बयान से तो ये तासर भी मिलता है कि बाबा साहब की अपनी मनकुआ से अजवाजी तलुकात कायम होने से बेशतर ही अलहदगी हो गई थी और वह बकाया उम्र मजदूर रहे। इस सूरत में सवाल पैदा होगा कि नसल आगे कैसी चली। डॉक्टर अकबर हैदरी का कश्मीरी ने ख़ानदान इकबाल की असलियत के बारे में एक मजमून लिखा है जो पहले हफ्तावार कौमी आवाज़ लखनऊ 24 फरवरी 1980 में और दूसरी बार चंद तब्दीलियों के साथ रोजनामा आफ्ताब श्रीनगर 21 अप्रैल 1981 में शाया हुआ। अकबर हैदरी फरमाते हैं कि दरअसल फोक ने इकबाल और दीगर लोगों को इस गलत फहमी में मुबतला किया है कि इकबाल कश्मीरी ब्राह्मण जाद और सपरों खानदान से मंसूब थे। इसने लफज सपरों की तशरीह के मुतलक भी अफसाना घड़ दिया है, बल्कि अपने पहले मजमून में तहरीर करते हैं कि इकबाल के हालात जिंदगी सर अब्दुल कादर ने लिखे, जो रसाला खुदांग नजर लखनऊ के शुमारा मई 1902 में शाया हुए। लेकिन सर अब्दुल कादर ने अपने इस मजमून में इकबाल के खानदान के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही। सो ये फोक ही थे जो हमेशा मनगढ़ंत किस्से बयान करने में दिलचस्पी रखते थे, मगर अकबर हैदरी का ये बयान दुरुस्त नहीं। सर अब्दुल कादर ने भी मुस्कुरा मजमून में तारीफ किया है कि शेख साहब इकबाल कश्मीरी अलहासल हैं और इनका कश्मीरी पंडितों के एक कदीम खानदान से तल्लक है जिसकी एक शाख अब तक वतन असली में मौजूद है। खानदान की वो शाख जिसमें शेख साहब हैं 200 साल हुए मुसलमान हो गई, गोत इनकी सब सैफरो है और इनके बुजुर्गान का इस्लाम पर ईमान लाना एक वली की असात अकीदत की वजह से हुआ। हर चंद सर अब्दुल कादर ने लफ्ज़ सफरों की बजाय सैफरो तहरीर किया है, लेकिन बात वही है जो फोक ने कही है। फोक या सर अब्दुल कादर ने खानदान इकबाल की असलियत के बारे में मन घड़त किससे बयान नहीं किए। बात दरअसल ये है कि फोक और अब्दुल कादर को ये मालूमात इकबाल या इनके वालद ने फराहम की थी। इसके बाद अकबर हैदरी ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि लफ्ज़ सैफरों की जो तशरी फोक ने नहीं बल्कि वालद इकबाल या खुद इकबाल ने बजाते खुद पेश की है वो किसी भी तारीखी किताब में मौजूद नहीं। सवाल यह है कि सप्रो कश्मीरी ब्राह्मणों की एक मशहूर गोत है और अगर इसके बारे में वालद इकबाल या इकबाल के बयान करदा तशरी अकबर हैदरी को काबिल कबूल नहीं तो फिर इनकी अपनी तहकीक के मुताबिक इसकी वजह तस्मिया क्या है। इकबाल को अपने वालद ही से ये मालूम हुआ था कि इनके जद्दे आला जिन्होंने इस्लाम कबूल किया बाबा लोल हज के लकब से पुकारे जाते थे। अकबर हैदरी फरमाते हैं कि दीदा मरी की तारीख कश्मीर आजमी वाकयात कश्मीर 1755 और मस्कीन की तारीख कबीर कश्मीर 1903 का माखज नसीबुद्दीन की किताब नूरनामा 1630 है जो अभी तक गैर मतबूआ है। इस किताब में ऋषियों के कमालात बयान किए गए हैं। वो फरमाते हैं कि तारीख से साबित है कि ऋषि के लिए शादी ममनू थी। इसके बाद वो बाबा लोल हज के बारे में दीदा मरी की बजाय मस्कीन की तफसील जो तारीखी अतबार से बहुत अरसे के बाद लिखी गई पर इन्हसार करते हुए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाबा लोल हज ने निकाह के बाद अजवाजी तलुकात कायम करने से बेशतर अपनी मनकुआ को छोड़ दिया और रहबनीयत अख्तियार कर ली। गो इनकी राय में बाबा लोल हज की नस्ल आगे ना चल सकती थी, लेकिन इकबाल के वालद ने अपने बुजुर्गों ही से ये सुना होगा कि इनके जद्दे आला जो मुसलमान हुए बाबा लोल हज थे और ये रवायत सीना बा सीना इन तक पहुंची होगी। इसलिए जैसा कि दीदा मरी के अकतबास से जाहिर है बाबा लोल हज की नस्ल लाजमन आगे चली होगी। अगरचा उन्होंने खुद अहलो अयाल को छोड़कर रहबानियत अख्तियार कर ली, बाबा लोल हज के असल पीरो मुर्शिद शेख नूरुद्दीन वली रशी भी तो अहलो अयाल को छोड़कर तारक दुनिया हो गए थे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि रशी के लिए शादी ममनू थी, बल्कि शर्त ये थी कि अगर औलाद व अजवाज से वाबस्तगी है तो वह इस तल्लुक को तोड़कर इनसे मुस्तकिल अलहदगी किनारा कशी या फरागत अख्तियार कर ले। सो खानदानी रवायात के मुताबिक बाबा साहब इस्लाम कबूल करने से बेशतर जात के ब्राह्मण और गोत के सैपरों थे। अलबत्ता ये मालूम नहीं हो सका कि इनका हिंदू नाम क्या था या इस्लामी नाम क्या रखा गया। इनका जिक्र तो इनके लकब ही से हम तक पहुंचा है, पर खानदानी रवायत को अगर दीदा मरी के बयान की रोशनी में देखा जाए तो ये बात अखज की जा सकती है कि बाबा साहब ने निकाह से बेशतर इस्लाम कबूल किया और कुछ मुद्दत बीवी के साथ बसर करने के बाद इनके दरमियान खुला हुआ। इस सूरत में नस्ल आगे चलने का अमकान है, क्योंकि मजहब या अकीदे का तल्लक अकल से कहीं ज्यादा जज्बात से होता है। इसलिए किसी भी इंसान के लिए अपना मजहब या अकीदा तब्दील करना आसान नहीं। सवाल पैदा होता है कि बाबा साहब ने अपना रवायती मजहब छोड़कर इस्लाम क्यों कबूल किया। इसका जवाब मतज़क्रा किताब में मौजूद नहीं है। अलबत्ता इनकी ज़िंदगी के मुख्तसर हालात से जो हम तक पहुँचे हैं ये कयास किया जाता है कि यह तगैयर किसी जबर के तहत वक़ू पज़ीर हुआ ना किसी मादी फ़ायदे के हसूल की खातिर। अगर यह तगैयर किसी जबर के तहत वजूद में आया होता तो इस्लाम या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत व वाबस्तगी का ये आलम ना होता कि कई बार पाप प्यादा हज को जाते और किसी मादी फ़ायदे के हसूल की खातर ये तब्दीली रुनमा हुई होती तो इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी माली हालत के बेहतर हो जाने का सबूत मिलता। बाबा साहब का तल्लक ब्राह्मणों के इस ग्रोह या गोत से था जिसने अपनों की तारीज व तहकीर की परवाह ना करते हुए फारसी जबान की तरफ तवज्जो की और इनमें इम्तियाज हासिल किया। मुमकिन है बाबा साहब अपने ब्राह्मण बुजुर्गों या दीगर भाई बंदों की तरह फारसी जानते हों और इस जुबान से शनासाई के सबब इन पर इस्लामी अलूम के दरवाजे खुले हों और इस जाती जद्दोजहद या मुताले ने इनके कलब व जहन में ऐसा इनकलाब बेपा किया हो जो इनके इस्लाम कबूल करने पर मुंतज हुआ। ये भी हो सकता है कि बाबा साहब अपने रवायती मजहब से मुतमिन ना हो और या मजहबी और दीनी मामलों में रवायात के पाबंद होने की बजाय मुतजस्स या ताज़ा पसंद तबीयत रखते हों। फोक तहरीर करते हैं कि इकबाल के बुजुर्गों का इस्लाम पर ईमान लाना एक वली के साथ अकीदत की वजह से हुआ और वो हुसन अकीदत आज भी इनके खानदान में मौजूद है। बहरहाल यह कयास किया जा सकता है कि दारा इस्लाम में आने के बाद बाबा साहब का निकाह किसी मुस्लिम घराने के खतून से हुआ हो। दीदा मरी और मस्कीन दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इनकी बीवी से तलुकात अच्छे ना थे। हो सकता है कि जैसा कि मस्कीन बयान करते हैं, इनकी बीवी इनकी भेंगी आंखों और टेढ़े पाँव की वजह से इन पर हंसा करती हो, जिसके सबब बाबा साहब बिलाकर दिल बर्दाश्त होकर ना सिर्फ अहल वयाल को छोड़कर बल्कि तारक दुनिया ही हो गए। कश्मीर को खैर आबाद कहकर हरमैन शरफी का रुख किया और 12 साल तक सियाहत करते रहे। इस मुख्तसर सी तफसील से वाजह है कि बाबा साहब तबीयत के किस कदर हसास और खुददार होंगे। बीवी का रवैया बातनी हुस्न की तलाश में इनके लिए मामीज साबित हुआ। वो ईमान व इस्लाम की शमा तो अपनी जद्दोजहद या किसी आरफ की तवज्जो से अपने अंदर फरोजा कर ही चुके थे, लेकिन इनके शौक की तस्कीन के लिए किसी मुर्शिद कामल से बैत लाजमी थी। बस 12 साल की हिजरत के बाद जब वो वापस कश्मीर आए तो इन्हें वो इशारा गैबी मिला जिसका इन्हें इंतज़ार था और इन्होंने बाबा नसरुद्दीन की मुरीदी इख्तियार करके सिलसिला रशिया से वस्ती पैदा कर ली। जकरा किताब में बाबा साहब की औलाद का कोई जिक्र नहीं मिलता। ऐन मुमकिन है कि तारक दुनिया हो जाने के बाद इनका अपनी औलाद से कोई वास्ता या सरोकार ना रहा हो। अब सवाल पैदा होता है कि इकबाल के जद्दे आला कब मुसलमान हुए। इकबाल के बेशतर सवाने नगार तहरीर करते हैं कि वलादत इकबाल से तकरीबन सवा 2 या 250 साल बेशतर इनके बुजुर्गों ने इस्लाम कबूल किया। हॉक ने लिखा है कि वो तकरीबन सवा 200 साल हुए आलमगीर के ज़माने में मुशर्रफ बाई इस्लाम हुए थे, लेकिन ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती बल्कि फोक की अपनी तहरीरें इसे गलत साबित करती हैं। फोक ने अपनी तसनीफ तारीख बुडशाही मतबूआ 1944 के बाद अहद बुडशाही के उलमा मशायख में जिन उलमा व मशायख या सिलसिला रशिया से मुंसलिक बुडशाह के ज़माने कि जिन सूफिया के नाम दर्ज किए हैं इनमें शेख नूरुद्दीन वली रशी और शेख नसरुद्दीन के साथ बाबा लोली हाजी का जिक्र भी किया है। बुडशाह 1420 में तख्ते कश्मीर पर बैठा और 1470 में इसने वफात पाई। इससे जाहिर होता है कि इकबाल के जद्दे आला 15वीं सदी में मुसलमान हुए, यानी इकबाल की पैदाइश से तकरीबन 450 साल कबल और जहीरुद्दीन बाबर के हिंदुस्तान में वर्द से तकरीबन 100 साल पहले, जब तख्ते दिल्ली पर सदात या इनके बाद सुल्तान बहलूल लोधी का कब्जा था। पंजाब के बेशतर हिस्से पर जसरत गखड़ हावी था और दक्कन में बहमनी खानदान की हुकूमत थी। इस बात का जिक्र ऊपर अशारतन आ चुका है कि इकबाल के जद्दे आला बाबा लोल हज का सिलसिला तल्लक रशिया से था, इसलिए सूफिया के इस हल्के का जिक्र ज़रा तफसील से करना गैर मुनासब ना होगा। फॉक की तहकीक के मुताबिक कश्मीर की तारीख 5000 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित है और इस दौरान इस पर हिंदू राजगान के 21 खानदान यकबा दीगर हुक्मरान रह चुके हैं। राजगान कश्मीर को 11वीं और 12वीं सदी में जवाल आया और इसके असबाब कहत सैलाब महालाती साजिशें और अंदरून ने मुल्क खाना जंगी थे। बिलाखिर जुल्कदर खान तातारी जिसे अहले कश्मीर जुल्चू के नाम से पुकारते हैं के हमले ने हिंदू राजगान के आखिरी खानदान का खात्मा कर दिया। 13वीं सदी के शुरू में कश्मीर पर शहमीरी खानदान काबूज हुआ। इस तुर्की नस्ल मुसलमान खानदान का बानी शाह मीर जो बाद में सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का बादशाह बना, शुमाली अफगानिस्तान के इलाका पंजकोड़ा से कश्मीर आया। फोक के अंदाजे के मुताबिक फारसी बतौर सरकारी जुबान 1295 में कश्मीर में राइज हुई और गलबन इसी दौर में कश्मीरी ब्राह्मणा के एक ग्रोह ने कदीम कौमी व मजहबी रसूम व तसबात को खैरबाद कहकर इस्लामी जुबान व आलूम की तरफ रजू किया, जो रफ्तार रफ्तार एक मुस्तकिल गोत की हियत में सपरों कहलाया। शामीरी खानदान के मुसलसल सलातीन शहाबुद्दीन कुतुबुद्दीन और सिकंदर बुत शिकन हो गुजरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत सुल्तान जैनुल आबदीन बुढ़ शाह ने के नसीब में आई। बुढ़ शाह 1420 में कश्मीर के दारुल सल्तनत नौशहरा, मेरा कदल और गांदरबल के दरमियान श्रीनगर का शुमाली गोशा में तख्त नशीन हुआ और 1470 में इसने वफात पाई। इसके 50 साल अहद हुकूमत में कश्मीर ने ज़ाहरी और बातनी उलूम में बड़ी तरक्की की। बादशाह खुद आलम और शायर था, कई जबानों से आगाह था, आलमाए मशाइख और सूफिया की कदर करता था। इसने संस्कृत की कुतब का तर्जमा फारसी में और फारसी कुतब का तर्जमा संस्कृत में करा के हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे की मजहबी तलीमात और अलूम समझने का मौका फराहम किया। इसी मकसद की हसूल की खातर दारुल तर्जमा और दारुल तसनीफ का इजरा भी किया गया और सुल्तान के कहने पर मुल्ला अहमद ने महाभारत को फारसी का जामिया पहनाया। बुढ़शाह एक बेतासब और मुहब्बे वतन बादशाह था और अपने जाती हुस्ने सलूक की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में हर दिल अजीज था। सफा नंबर 19। बादशाह ने हिंदुओं की दिलजोई के लिए जजिया मक़फ़ूफ़ कर दिया और बुत खानों और मंदिरों की निगरानी के अलावा इनके साथ साथ पाठशाले भी बनवाए। इसने ला अकरा फिद्दीन का अमली नमूना पेश किया। सबका सलातीन के अहद में जिन हिंदुओं को बा अकरा मुसलमान किया गया था, सुल्तान के हुक्म से इन नौ मुस्लिम हिंदुओं की शादी की गई और किसी काजी या मुफ्ती को जुर्रत ना हुई कि इनसे इर्तदाद का मुआवजा करता। जिन हिंदुओं ने वतन से दूरी अख्तियार कर रखी थी, इन्हें वापस बुलाकर इनकी जायदादें इन्हें लुटाई गई और इनके वज़ायफ़ मुकर्रर किए गए। फॉक के बयान के मुताबिक फारसी जुबान कश्मीर में अहद बुढ़ शाह से 125 साल से ज्यादा अरसा से सरकारी जुबान की हैसियत से राइज हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ब्रह्मणा कश्मीर में बेशतर इसे मलिच्छों की जुबान समझते थे और अपने भाई बंदों को फारसी पढ़ने या सरकारी मुलाजमत हासिल करने से रोकते थे। और इनमें से जो फारसी सीख कर सरकारी मुलाजमत अख्तियार करता था, इसे अपनी बरादरी से खारिज कर देते थे। बादशाह ने हिंदुओं को फारसी पढ़ने की तलकीन की। फारसी पढ़ने वाले हिंदू तलबा के लिए खास वज़ायफ़ मुकर्रर किए गए। चुनाचा इस ज़माने में बहुत से कश्मीरी पंडितों ने फारसी पढ़ना शुरू की और थोड़े ही अरसे में इनमें फारसी जुबान के ऐसे नामवर शायर और आलम फाजल पैदा हुए कि सुल्तान ने इनकी काबिलियत की वजह से इन्हें सर आंखों पर बिठाया और आला मरातब पर फाइज किया। बुढ़शाह से पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन और सुल्तान सिकंदर बुत शिकन के अहद में मुसलमान ऋषियों के नाम तारीखों में मिलते हैं, लेकिन दर हकीकत शेख नूरुद्दीन वली ऋषि जिन्होंने सिकंदर बुत शिकन और बुढ़ शाह दोनों का जमाना देखा था, इस हलके के पेशवा और सरखील थे। सूफिया के इस सिलसिला में कश्मीर में अशात व तबलीग इस्लाम में बड़ी मदद मिली। बकौल फोक, ऋषि बजाय खुद कोई जात या गोत नहीं बल्कि जहद का तबका था जिसे इस नाम से पुकारा जाता था। इसमें क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण, वेश, मीर और भट जातों के अफराद शामिल थे, मगर अक्सरियत ऐसे सूफिया की थी जो अपना रवायती मजहब तर्क करके दारा इस्लाम में आए थे। ऋषि संस्कृत में तर्क दुनिया और मशगूल बा याद खुदा शख्स को कहते हैं। कश्मीरी जुबान में ऋषि की बजाय रखी लफज भी इस्तेमाल किया जाता था। जाहिदों और आबदों का यह तबका अजवाज व औलाद, मालो मता, हवास व हवस से लातल्लक, आबादियों से दूर जंगल बियाबानों या पहाड़ों की गारों में सकवत खलवत की कफ़ियत में अबादत व रियाजत में मशगूल रहता और जंगली पैदावार पर गुजारा करता। फोक के बयान के मुताबिक बाज़ तारीखों में रशी की वजह तस्मिया लफज रिशा से मनसूब की गई है कि चूंकि ये लोग महारबा नफस व शताइन में जहाद अकबर से काम लेते और शमशीर रियाजत और अबादुल कसीरुल मशक्कत से अपने बदन को रेशा रेशा कर देते थे, इसलिए रशी कहलाए। बानी सिलसिला रशियां शेख नूरुद्दीन वली के वालद जिनका हिंदू नाम सलार सांस था, जब मुसलमान हुए तो इनका इस्लामी सलारुद्दीन रखा गया। वो जात के कश्तरी राजपूत थे और राजा पता सांस राजगाने कश्तवार की चौथी पुश्त में से थे। इनकी अहलिया और शेख नूरुद्दीन वली की वालदा का नाम सिदरा माजी था। हजरत शेख मौजा कैमुआ में 1378 में पैदा हुए। फोक तहरीर करते हैं कि जनाब शेख ने जवान होकर अपने भाइयों के जेर असर राहजानी इख्तियार की, मगर आप इस पेशा से सख्त बेजार थे। चुनाचा 30 साल की उम्र में राहजानी तर्क करके और अहलोयाल छोड़कर तारक दुनिया हो गए। कई बरस पहाड़ों और जंगलों में सरफ कासनी के पत्ते खाकर गुजारा किया। तारीखों में शेख नूरुद्दीन वली की तहसील, रशद व हदायत व कशफ अकरामात से मुतल्लिक कई रवायतें दर्ज हैं। वो कश्मीरी जुबान के मरूफ शायर भी थे। उन्होंने 1439 में 63 साल की उम्र में वफात पाई और चरार शरीफ में दफन हुए। बादशाह इनका बड़ा मकदद था, इसलिए अपने अमरा व वज़रा समेत इनकी नमाज जनाजा में शरीक व रोज़ा की तमीर भी सुल्तान ही के हुक्म से की गई। बाद के सलातीन ने इस तमीर में वक्तन फवक्तन इजाफे किए। 1808 में कश्मीर के अफगान सूबेदार अता मोहम्मद खान ने इनकी तज़ीम में इनके नाम का सिक्का भी जारी किया। हजरत शेख के खलीफा अव्वल का नाम बामुद्दीन रशी था। आप कबूल इस्लाम से बेशतर ज़ात के ब्राह्मण थे और इनका असल नाम भी भीमा सादे था। खलीफा दोम का नाम जैनुद्दीन रशी था। आप ज़ात के खजत्री राजपूत थे और हिंदू नाम जियासीन या सिंह था। खलीफा सोम का नाम लतीफुद्दीन रशी था। आप भी ज़ात के खजत्री राजपूत थे और हिंदू नाम लद्दे रीना था। शेख नसरुद्दीन रशी जो इकबाल के जद्दे आला बाबा लोल हज के मुर्शद थे, शेख नूरुद्दीन वली के खलीफा चहारम थे। आप भी ज़ात के खजत्री राजपूत थे और हिंदू नाम रोहतर था। आप हजरत शेख की तवज्जो से मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। वफात 1451 में हुई और चरार शरीफ में दफन हुए। शेख नसरुद्दीन के मरूफ मरीदों के नाम ये हैं: लच्छम रशी अव्वल, लच्छम रशी दोम, जवाहरुद्दीन रशी, सदरुद्दीन रशी, बदरुद्दीन रशी और बाबा लोल हाज। बाबा लोल हाज के जिन मरीदों का जिक्र तस्करों में मिलता है वो हैं रुकनुद्दीन रशी, जो अपने मुर्शिद की वफात के बाद इनके जानशीन मुकर्रर हुए, और रबनूर रशी जो मौजा लजोरा पत्ता चराट के रहने वाले थे। सिलसिला रशिया के बाद के उर्फा की तफसीलात के लिए मजीद तहकीक की ज़रूरत है। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में बरसगीर में सूफिया के जो मरूफ सिलसिले या तरीके राइज हुए, इनके बानी अमूमन सैयद थे, जो वस्ती एशिया या मशरक़ वुस्ता से यहाँ आए और यहीं इन्होंने वफात पाई। इनके खलूफा या जानशीन भी अक्सर इनके अपने खानदान या औलाद में से मुकर्रर हुए, लेकिन सिलसिला रशिया की एक वाज खसूसियत यह है कि इसके बानी कश्मीर ही की सरजमीन के एक नौ मुस्लिम खिश्तरी राजपूत के फरजान थे, और इनके खलफा या जानशीन और मुरीद भी सब के सब नौ मुस्लिम थे। दूसरी खसूसियत इसी तरीका की यह है कि इनकी तलीमात व यदनाती और वजूदी फिक्र के इम्तजाज पर मबनी थी। तर्क दुनिया की तलकीन तो खालसतन विदनाती नवीयत की थी। फोक ने अपनी तसनीफ तारीख अकवाम कश्मीर तबात 1943 में इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक से चौथी पुश्त में एक बुजुर्ग शेख अकबर का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, बाबा लोल हाज की औलाद में एक बुजुर्ग शेख अकबर के नाम से हुए हैं। बा अमल सूफी और बुजुर्गों की सोहबत में बैठने वाले थे। इनके तकदस व अतका और इनकी खानदानी निजाबत की वजह से उनकी शादी उनके मुर्शद ने, जो सैयद थे, अपनी साहबजादी से कर दी। मुर्शद की वफात पर उनके फरजान सैयद मीर नाम नाबालग थे, इसलिए वही अपने मुर्शद के जानशीन करार पाए। शेख अकबर सिलानी तबा थे। कई बार इन्होंने पंजाब का सफर किया। फौक ने यह नहीं बताया कि इकबाल के इस बुजुर्ग के मुतल्लिक इनकी मालूमात का जरिया क्या था। सफा नंबर 22 ना ये वाजे किया है कि शेख अकबर बाबा लोल हाज की किस पुश्त में से थे। इस तफसील से ये भी जाहिर नहीं होता कि शेख अकबर के मुर्शिद का नाम क्या था या वो सूफिया के किस सिलसिला या तरीका से वाबस्तगी रखते थे। इस सिलसिला में सैयद नज़ीर नियाज़ी ने अपनी किताब में इकबाल का एक बयान नकल किया है जो काबिल तवज्जो है। इकबाल ने इन्हीं बताया, हमारे वालद के दादा या परदादा पीर थे, इनका नाम था शेख अकबर। इन्हीं पीरी इस तरह मिली के संगतरा में सदाक का एक खानदान था जिसे लोग सैयद नहीं मानते थे और इसलिए इन पर हमेशा तहन तशनी हुआ करती थी। इस खानदान के सरबराह को एक रोज जो गुस्सा आया तो एक सबज कपड़ा ओढ़ कर आग में बैठ गया, जिसके मुतल्लक रवायत थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार है। इसकी बरकत से आग ने इन पर कोई असर ना किया। मुखालफीन ने ये देखा तो इन्हें यकीन हो गया कि वो फिल वाकया सैयद हैं। इनका इंतकाल हुआ तो शेख अकबर ने इनके मरीदों को संभाला और खानदान की खिदमत करने लगे। एक मरतबा इसी खानदान का एक फर्द वालद माजद के पास आया और कहने लगे, आप धस्सों की तजारत क्यों नहीं करते? इस जमाने में मामूली धस्सों की कीमत 200 रुपया फी धस्सा से ज्यादा ना थी। वालद साहब ने कोई 200-400 धस्से तैयार किए तो कुदरत खुदा की ऐसी हुई कि सब के सब अच्छे दमों पर बिक गए। हालांकि फी धस्सा 8 आने से ज्यादा लागत नहीं आती थी, 200-400 धस्से फरोख्त हो गए तो काफी रुपया जमा हो गया। बस ये इब्तदा थी हमारे दिन फिरने की, फिर भाई साहब भी मुलाजम हो गए। बकौल सैयद नज़ीर नियाज़ी, इकबाल ने शेख अकबर के पीर खानदान के सुकुंती गांव के लिए लफ्ज संग धरा इस्तेमाल किया है। नियाज़ी ने हाशिया में संग धरा को जिला सियालकोट का एक गांव बयान किया है। जिला सियालकोट में एक गांव इस नाम का जरूर है, मगर फोक ने जो तफसील दिया इसमें ये जिक्र नहीं किया कि शेख अकबर का सैयद पीर खानदान संगतरा जिला सियालकोट में सुकूनत पजीर था, बल्कि इसके बरक्स इस खानदान की सुकूनत कश्मीर ही में मालूम होती है, क्योंकि लिखा है कि शेख अकबर ने कई बार पंजाब का सफर भी किया। फौक ने शेख अकबर को इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक की चौथी पुश्त पर बयान किया है। नियाजी की तहरीर से जो नई बात पैदा होती है वो शेख अकबर के पीर खानदान की सुकूनत से के मुतल्लिक है, यानी क्या यह खानदान कश्मीर में था या जिला सियालकोट में। अगर मौखल जिक्र सुकूनत दुरुस्त है तो फोक के बयान और शेख इजाज अहमद की अपनी इतला के मुताबिक कश्मीर से हिजरत शेख नूर मोहम्मद के वालिद शेख मोहम्मद रफीक और इनके 3 भाइयों ने नहीं की, बल्कि इनकी पैदाइश से बहुत पहले यह खानदान हिजरत करके सियालकोट आ चुका था, और शेख नूर मोहम्मद के दादा या परदादा शेख अकबर जिला सियालकोट में ही सुकूनत पजीर थे। मगर ये भी मुमकिन है कि शेख अकबर की सुकूनत कश्मीर में हो और इनका पीर खानदान जिला सियालकोट ही में मुकीम हो, जिसकी निगहदाश्त की खातर वो पंजाब या जिला सियालकोट में आते जाते रहते हों। नियाजी की तहरीर की तरफ जब राकम ने शेख इजाज की अहमद की तवज्जा मबजूल कराई तो इनकी राय के मुताबिक हो सकता है कि चाचा जान ने कश्मीर के किसी गाँव का नाम लिया हो जिसे नियाजी साहब ने संगतरा सुना हो। ये वजाहत तो नियाजी साहब ही कर सकते हैं, अगर 38 साल बाद इन्हें हतमी तौर पर याद हो कि क्या चाचा जान ने शेख अकबर के पीर खानदान के मुतल्लिक ये वजाहत की थी कि ये जिला सियालकोट वाला संगतरा था। इससे बयान ये जाहिर ये होता है कि मियाँ जी वालद इकबाल की हयात तक पीरों के इस खानदान से तल्लुकात कायम थे। वहाँ इससे ये इस्तदलाल भी लिया जा सकता है कि पीरों का ये खानदान जिला सियालकोट में ही सकूनत रखता था, लेकिन ये भी हो सकता है कि पीरों के खानदान का ये फर्द मियाँ जी के पास कश्मीर से आया हो।